नमस्कार भारत, 25 अगस्त रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज अंतिम संस्कार, बहरीन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद।
कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया।
G7 सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप के बीच क्या हो सकती है बातचीत?
जहाँ तक मोदी और ट्रंप की बात है, वहाँ तो मुख्य मुद्दा से कश्मीर रहेगा।
साथ ही जानेंगे श्रीनगर के सौरा में लोग हर सप्ताह कैसे कर रहे हैं प्रदर्शन। होगी पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार की दोपहर निधन हो गया। वो बीते 9 अगस्त से एम्स में भर्ती थे। आज सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को BJP मुख्यालय लाया जाएगा। BJP के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर बाद दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहरीन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी बहरीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बहरीन की मेरी ये यात्रा भले ही सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री के तौर पर है, लेकिन मेरा मकसद यहां बसे भारतीयों से मिलना और बहरीन के लाखों दोस्तों से संवाद करने का भी है। ब्राजील के रक्षा मंत्री का कहना है कि सशस्त्र सेना ने वर्षावन में लगी आग को काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2 हवाई जहाज हजारों लीटर पानी और खास किस्म के रसायन को लेकर रवाना हो चुके हैं। सरकार की ओर से अपनी नीतियों में ढील देने और आपातकाल को देखते हुए हर संभव प्रयास करने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी ओर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को उनकी नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ब्राजील के पर्यावरण मंत्री रिकार्डो सेलेस ने बताया कि सरकार स्थानीय सेवा कर्मियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमेज़न क्षेत्र में पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को काबू करने के लिए हम हर आवश्यक उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए हम स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। ये थे ब्राजील के पर्यावरण मंत्री के शब्द। ब्राजील में आज आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए, जिसके अनुसार अमेज़न क्षेत्र में सैकड़ों और नई आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। ब्राजील का कहना है कि इस साल अब तक 70,000 से 80,000 ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ये आंकड़े 2013 के बाद सबसे ज्यादा हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्पेन के पूर्व नरेश जुआन कार्लोस की मैड्रिड में ट्रिपल हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है। 81 वर्षीय कार्लोस इससे पहले पूरी तरह स्वस्थ थे। जून 2019 में उनकी इस बीमारी के बारे में पता चला। क्वेरॉन अस्पताल की प्रवक्ता लूसिया अलोंसे ने बताया,
La cirugía ha finalizado con éxito y ha consistido en la realización.
उनकी सर्जरी सफल रही, ये बिना किसी मुश्किल के सफल रही। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी सर्जरी के बाद मरीज को डॉक्टरों की निगरानी में रखने की जरूरत होती है और उससे बहुत देखभाल की जरूरत होती है। लूसिया अलोंसो के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने G7 समिट में शामिल हुए नेताओं से अपील की है कि सभी को मिलकर वैश्विक व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक युद्ध किसी एक या दो देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी देशों को इसके लिए सहमत कर सकें। इजरायली सेना का कहना है कि मारक ड्रोन हमलों को रोकने के लिए उसने सीरिया की राजधानी के पास ईरानी सेना के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। वहीं जवाब में सीरियाई सेना का कहना है कि इजरायली सेना ने हमले तो किए हैं, लेकिन उनके हमलों को लक्ष्य भेदने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। जर्मनी के शहर ड्रेसडेन में चरमपंथ के खिलाफ एक प्रदर्शन में करीब 40,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में तख्तियां भी थीं, जिन पर लिखा था, जातिवाद कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ है जबकि एक सप्ताह बाद सैक्सोनी राज्य में चुनाव होने वाले हैं। BBC समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया था, लेकिन कल जब वो बहरीन पहुंचे तब भी उन्होंने अरुण जेटली का जिक्र किया। उन्होंने बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि देश जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है, लेकिन इसी पल उनके भीतर एक गहरा शोक और दर्द दबा हुआ है। उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति में अरुण जेटली का कुछ यूं जिक्र किया।
मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। अरे अगस्त महीना, कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया।
अरुण जेटली के निधन को बीजेपी की बड़ी क्षति बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पार्टी की एक और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। उससे पहले इसी साल मार्च में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और बीते साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का देहांत हुआ था। अरुण जेटली का निधन देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति है, सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की ये खास रिपोर्ट।
अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते थे और बुद्धिजीवी भी माने जाते थे। परिकर IIT से डिग्री लेने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता कहती हैं कि एक के बाद एक बड़े नेताओं का निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। हालांकि वो सवाल करती हैं,
ये दुखद तो है मगर जो नया बीजेपी है उसमें क्या इन लोगों का कोई जगह था, स्पेशली ये सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, क्योंकि ये सब जिनका ट्रेनिंग लालकिशन अडवाणी जी के जो प्रोटेजेस थे उनके लिए कोई जगह था पार्टी में, ये मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जगह कम ही हो गया था। मैं यही कहूंगी कि जो नया बीजेपी है उसमें दो ही नेता हैं जो सब डिसीशन ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह।
अरुण जेटली ने बड़े विवादों के बीच भाजपा का हमेशा बचाव किया। 2005 में पार्टी की विद्रोही नेता उमा भारती पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा और उन्हें निष्कासित किया गया। इसके जवाब में लालकृष्ण आडवाणी के पाकिस्तान जाने को लेकर उमा भारती ने उन्हें अनुशासनहीन बताया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद उन्हें फिर पार्टी में शामिल किया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में अरुण जेटली ने जो कहा वो बताता है कि पार्टी में सबको एक साथ लेकर चलने के बारे में वो क्या सोचते थे। अरुण जेटली ने कहा था,
अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट ऑन एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोर लाइक अ फैमिली।
राजनीतिक पार्टी में किसी मालिक नौकर के रिश्ते जैसा कुछ नहीं होता, ये एक परिवार की तरह होती है और हम इसे इसी तरह चलाते हैं। कभी कभी आप उन्हें गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी आप उनको खुश करते हैं, कभी आप उन्हें स्नेह का एहसास कराते हैं और कभी कभी आप उन्हें माफ भी करते हैं।
स्मिता गुप्ता कहती हैं कि एक जगह है जहां उनकी कमी महसूस होगी और वो है राज्यसभा, जहां वो 10 साल तक विपक्ष के नेता या फिर सदन के नेता रहे।
इनका एक बहुत बड़ा एक भूमिका रहा था विपक्ष के साथ एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखने में।
वरिष्ठ पत्रकार जयंतो रॉय चौधरी बताते हैं कि छात्र नेता रहने के दौरान दूसरी पार्टी से जुड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। वो बताते हैं कि आपातकाल के दौरान अरुण जेटली जेल गए, बाद में जब वो जेल से वापस लौटे तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हीरो बन गए।
छूट के आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पहली इलेक्शन हुई उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SFI मतलब जो CPM की जो यूथ विंग थी, ये सारे के सारे AISF जो CPI की यूथ विंग थी, ये सब इकट्ठा इलेक्शन लड़े NSUI के खिलाफ। और जेटली साहब क्योंकि वो तब छात्र नहीं रहे, वो उनके लिए कैंपेन जरूर किए थे। वो जो साथ सबको लेके चलने का, ये उनका फॉर्मूला शायद उस वक्त के लिए रहा हो। बाद में इसके फायदा उनको जरूर मिला राज्यसभा में, पार्लियामेंट में।
जयंत राय चौधरी बताते हैं कि GST को लेकर अरुण जेटली की काफी आलोचना हुई, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि आज से 20 साल बाद उन्हें इसके लिए याद किया जाएगा।
एक अच्छी टैक्स सिस्टम प्रणाली है जो चिदंबरम साहब ने शुरू की थी, प्रणब बाबू ने भी कोशिश की थी इसको पारित किया जाए, परंतु आखिर में ये इसका जो श्रेय है वो जेटली को मिला। और क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने सबकी बात किसी ना किसी तरह से एक मिल मिलाव करके, एक सुझाव करके उन्होंने इसको पारित कर पाए।
जयंत राय चौधरी बताते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सेंसस यानी सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति में जेटली पारंगत थे। अरुण जेटली के बाद पार्टी में इस जगह को कौन भर पाएगा? इसके जवाब में जयंत राय चौधरी कहते हैं कि हर पार्टी में अब जिद्दी बना आ गया है। उन्हीं के शब्दों में,
कांग्रेस में जो पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस करते थे प्रणब बाबू, वो वरिष्ठ नेता बन गए हैं राष्ट्रपति के बाद, तो वो किसी भी पार्टी में नहीं रहे, तो किस पार्टी में पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है ये भी देखने पड़ेगा।
वो कहते हैं किस पार्टी में पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस है, अभी तो फिलहाल हमें यही देखना होगा। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन दौरे के बाद आज G7 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फ्रांस के बियारिट्स पहुंचेंगे। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को चेतावनी दी है कि यूरोप में काम करने वाली अमरीकी तकनीकी कंपनियों को परेशान किया गया तो वो भी अधिक कर लगाने पर विचार करेंगे। G7 में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, अब से थोड़ी देर पहले मैंने बियारिट्स में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर से यही पूछा।
जो मुख्य मुद्दे हैं G7 के लिए इस बार, ये मैक्रों ने काफी कोशिश की है कि उसमें फ्रांस, यूरोप के अलावा और G7 के अलावा जो विश्व के जो सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको मुख्यतः सामने लाया जाए। तो जैसे क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट, इनइक्वालिटी, इसको उन्होंने काफी हाईलाइट किया है कि इनइक्वालिटी कैसे देशों के अंदर और विश्व स्तर पे एक तरह से देशों के बीच में ये बढ़ती जा रही है। जो अमीर देश हैं वो ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब देश हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, एटलीस्ट कंपैरिजन में उनमें प्रगति हो रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अमीर देश कर पा रहे हैं। मुख्य मुद्दे इनइक्वालिटी के अलावा एक तो ग्लोबल ट्रेड रहेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो ट्रेड वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया है, उस पर भी वार्तालाप होगा। और फ्रांस ने पिछले महीने एक नया टैक्स लगाया था जो कि गूगल टैक्स कह सकते हैं या डिजिटल टैक्स कह सकते हैं, उसने ये टैक्स उन कंपनीज पे टारगेटेड है जो कि इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमीज में है और वो लोकल किसी भी कंट्री में जहां उनका मार्केट है वहां टैक्स नहीं भरते हैं। तो फ्रांस ने एक मैंडेटरी टैक्स लगा दिया है कि जिस कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो से ज्यादा होगा और फ्रांस में अगर उसकी सेल 25 मिलियन से ज्यादा है तो उन्हें अपने टोटल रेवेन्यू पे 3% टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी खफा है और उन्होंने एक तरह से इसका वार भी कर दिया है कि अगर फ्रांस ये टैक्स लगाने पे अड़ा रहेगा तो अमेरिका भी फ्रेंच वाइन्स पर और यूरोपियन वाइन्स पे एक अलग टैक्स लगाएगा
जी।
तो हो सकता है कि इसमें अगर ये मामला अगले 2 दिन में नहीं सुलझा तो अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है और अमेरिका और यूरोप का भी एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाए।
दूसरी ओर अगर देखा जाए, आपने ट्रेड वॉर की बात की और इनइक्वालिटी पे बात की, असमानता पे बात की, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर भी यहाँ बातचीत हो सकती है, तो भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, तो क्या वहां पर ये बातचीत हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से भी मुलाकात होनी है।
जहाँ तक मोदी और ट्रंप की बात है वहाँ तो मुख्य मुद्दा मेरे ख्याल से कश्मीर रहेगा और उसके अलावा जो भारत ने भी जो कुछ मूव्स किए हैं जैसे डिजिटल इकोनॉमी को लेके, चाहे वो डेटा स्टोरेज की बात हो या ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर हो, इसको भी लेके डोनाल्ड ट्रंप काफी नाखुश हैं और उन्होंने इस मुद्दे पे पहले भी मोदी से बात की है और ये 3 मुद्दे जरूर उठेंगे। कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कहा था कि वो कश्मीर के बारे में बातचीत करेंगे मोदी से यहाँ पर बियारिट्ज में, तो कश्मीर और ये डिजिटल इकोनॉमी पे जो इंडिया के पिछले कुछ कदम है जो कि इंडिया के हिसाब से ठीक है लेकिन अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, इन मुद्दों पे यहाँ पे बात होगी। इसके अलावा जो G7 में जो इंडिया को बुलाया गया है और इंडिया के अलावा चिले, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और 4 अफ्रीकी देशों को बुलाया गया, तो उसमें क्लाइमेट चेंज में भारत क्या कर रहा है उसको रोकने के लिए, कैसे भारत की कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और कैसे भारत अपना जो नोहाव है या जो तकनीक है वो बाकी गरीब देशों या डेवलपिंग नेशंस के साथ शेयर कर सकता है। तो इस मुद्दे पे मैक्रों और मोदी के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें भी ये मुद्दा जरूर उठेगा और उसके अलावा एक ब्रॉड लेवल पे भी देखा जाए तो G7 की बाकी मीटिंग्स में भी ये बात जरूर उठेगी। और मोदी के यहाँ पे 3 सेशंस हैं, तीनों में भारत की तरफ देखा जाए कि भारत क्या रुख अपनाता है इन ग्लोबल समस्याओं की तरफ।
G7 में वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा, अधिक जानकारी दे रहे थे रणवीर नैयर। रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से श्रीनगर के सौरा में हर सप्ताह जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में संचार व्यवस्था अब भी पूरी तरह चालू नहीं हो पाई है और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा को सौरा इलाके के भीतर जाने का मौका मिला। आमिर पीरजादा ने बीबीसी संवाददाता मानसी दास को विस्तार से जानकारी दी कि सौरा में उन्होंने क्या कुछ देखा और प्रदर्शनकारी किस तरह विरोध करना जारी रख रहे हैं।
गवर्नमेंट ने जामा मस्जिद हो, दरगाह हो, जितनी भी बड़ी मस्जिद है उनमें नमाज जुमे के दिन इस बार भी नहीं हुई। जो अभी फ्राइडे तीसरी फ्राइडे थी, हम सौरा की ओर गए क्योंकि सौरा इस बार इन प्रोटेस्ट का एक हॉट बेड रहा है। इस फ्राइडे जुमे की नमाज के बाद जो हमने देखा, सैकड़ों में लोग गैदर हुए, उन्हें एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला जो अगेन सौरा की आचार की उन्हीं गलियों में ही निकल के जो आधे घंटे तक का प्रोसेशन चला और वो डिस्पर्स हुआ। लेकिन जो ही वो डिस्पर्स होने वाला था, उसी से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस एक गली से सौरा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से सारे यूथ उसकी तरफ भागने लगे पत्थर लेके और वहाँ पे क्लैशेस की एक बिगनिंग हुई। जो क्लैशेस एक घंटे तक चली, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसमें दो पैलेट इंजर्ड लोग मुझे दिखे जो वहां से उनको निकाला जा रहा था और उनको किसी घर की तरफ ले जाया जा रहा था पैलेट्स निकालने के लिए। तो उन क्लैशेस में टियर गैस शेल्स, पैलेट्स एंड पेपर ग्रेनेड्स का यूज हुआ, जिसमें चारों ओर धुआं था, लोग खांस रहे थे, चौकिंग हो रही थी। लेकिन एक और चीज जो नई मैंने इस प्रोटेस्ट में देखा वो ये था कि ये एक कलेक्टिव एक्शन था, जिसमें पूरा का पूरा एरिया, गांव, आदमी, औरतें, बच्चे सब हिस्सा ले रहे थे। जो ही पुलिस अंदर आ रही थी, औरतों ने तीन शटर्स बजाने शुरू किए। उसके बाद जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई तो जितने भी औरतें थे वो ठेलों में, हाथों में पत्थर और ईंटें ला रहे थे उनके सप्लाईज के लिए, सो वो पत्थर फेंक पाए। और दूसरा ग्रुप साथ में मैंने देखा जो टैंक पानी का सप्लाई कर रहा था, पीने का पानी। उससे पहले ही हमने वहाँ के एक नौजवान से बात की।
आंचर में जितने भी रास्ते हैं ना, 8-9 रास्ते हैं, मेन रोड से आंचर की तरफ जाते हैं 8 रास्ते, हमने 8 रास्ते बुला कर हमने रखा है। लोग भी खड़े होते हैं पूरी रात, 24 घंटे हम पहरा देते हैं यार।
मेरा दूसरा उनसे सवाल था, अगर पुलिस की गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी लेकिन पुलिस और फोर्सेस चल के अंदर आ सकते हैं, तो उनका जवाब था, हमारी ड्यूटी लगती है यूथ की, नौजवानों की, लोगों की। जो रात को एक ग्रुप हर एंट्री पे संतरी बन के रहेगा, दूसरे दिन नेक्स्ट डे दिन में वो शिफ्ट चेंज होती है। ये एक नई चीज थी हमारे लिए।
जी, तो ये हुई जुमे के दिन की बात। इसके आगे अब आपको क्या लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की अब तैनाती क्या, किस तरह की ढील है, मोबाइल सर्विसेज की क्या स्थिति है अभी?
अभी ऑलमोस्ट 20 दिन होने वाले हैं जब से मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन फोन्स, इंटरनेट सब बंद पड़ा है। सिक्योरिटी फोर्स की प्रेजेंस अभी भी हर जगह है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट की है। श्रीनगर के अपटाउन एरियाज की, जिसमें राजबाग या सिविल लाइन्स आती है, उनमें सिक्योरिटी उठा दी गई है। लेकिन जब हम डाउनटाउन की बात करते हैं, पूरा का पूरा डाउनटाउन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के कवर के अंडर है, अभी भी वहाँ बैरिकेड्स लगे हैं।
श्रीनगर के सौरा इलाके की जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का ही गिलगित बाल्टिस्तान इलाका भारत के लद्दाख इलाके के नज़दीक है। बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी ने गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू का दौरा किया और वहाँ लोगों की अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर राय जानी। हमारी सहयोगी मानसी दास ने शुमाइला जाफरी से बात की।
जो जनरली लोग हैं उनमें सेंटीमेंट जो है वो यही है कि उनको फिक्र है कि बॉर्डर के उस तरफ जो लोग रहते हैं और उनमें से कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ डिवाइडेड फैमिलीज भी हैं, स्कर्दू में उनका क्या हाल है, वो किस हाल में है। क्योंकि जिस दिन का ये डिसीजन हुआ है और 5 अगस्त, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रप्टेड है, किसी की भी अपनी फैमिली से बात नहीं हो रही। स्कर्दू में बहुत सी फैमिलीज ऐसी रहती हैं जो कि 1971 तक जिनके गांव जो थे वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, और फिर जब 1971 की जो वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उस पे कब्जा जो था वो इंडिया का हो गया उन गांव पे, और वो अपने घर और अपनी फैमिलीज जो है वो सब छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ा। अभी तक ऐसा हो रहा था कि जो प्रॉपर्टी थी और जो उनका घर बार था, इन सब खानदानों को ये उम्मीद थी 35A के होते हुए कि ये लोग वापस जाएंगे और उनको ये लगता था कि उनकी ओनरशिप है अपने घर बार पे, अपनी जमीनों पे, जायदादों पे, सब चीजों पे. और ऐसा भी होता रहा कि अगर उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी ने उस जमीन को वहां पर बेचना था तो उन्हें यहाँ से पाकिस्तान से स्टाम्प पेपर लिख के ये बाकायदा इजाजत देती थी, जिसके बाद वहां पे वो प्रॉपर्टी जो थी वो बेची जा सकती थी. अब ये जो सब कुछ हुआ है उससे जो दूसरी बड़ी एक परेशानी है स्कर्दू में बहुत सी फैमिलीज को, वो ये है कि उनको ये लगता है कि उनके घर बार पे से और उनकी जो जायदाद थी वहां पर उस पे से अब उनका हक नहीं रहेगा, उस पे कोई काबिज हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है वहां पे लाके कुछ और लोगों को सेटल कर दे, या हो सकता है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इंडियन सरकार के कब्जे में चली जाए. तो इस किस्म का माहौल है और फिक्र और परेशानी जो है वो बहुत है लोगों में.
वहां पर एक इस तरह का कानून भी है जो कि पाकिस्तान का लगाया हुआ कानून है जो कि काफी कुछ 35A के जैसा है, यानी कुछ वैसा ही जैसा भारत प्रशासित कश्मीर में जिस तरह एक स्वायत्तता मिली हुई थी, एक इंडिपेंडेंस थी.
जी बिल्कुल, ऐसा एक कानून यहाँ पर हुआ करता था, स्टेट सब्जेक्ट रूल या SSR उस कानून का नाम था. और ये कानून जो है ये 1974 में पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से चेंजेस किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करके इसको एक तरह से खत्म कर दिया गया था. अब जबकि इंडिया में 35A खत्म हुआ है और हमने देखा कि बल्तिस्तान में, स्कर्दू में, गिलगित में इसके ऊपर रिएक्शन है, तो वहां पे एक कुछ जो लिमिटेड कम्युनिटी ऐसी है जो नेशनलिस्ट हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वो अब ये डिमांड कर रही हैं कि पाकिस्तान जहां पे 35A के रिवोक किए जाने को कंडेम कर रहा है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज उठा रहा है, तो पाकिस्तान को अपने जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है वहां पर भी स्टेट सब्जेक्ट रूल या SSR को रिस्टोर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कानून जो था वो यही कहता था कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान की.
ये थी BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी. अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास छपा है. अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भूमिका राय. जी भूमिका बताएं.
जी शाहिद, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की खबर जो है वो लगभग हर अखबार में और लगभग हर पन्ने पर है.
जी जाहिर सी बात है.
जी
हर जगह दैनिक जागरण हेडिंग लगा रहा है, शीर्षक है नहीं रहे संकट मोचक जेटली.
जी और नवभारत टाइम्स अखबार की बात करूं तो उसने हेडिंग लगाई है अरुण अस्त, और उनसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को लगभग हर अखबार ने अपने हर पन्ने पर ही रखा है. उन्हें सॉफ्ट टिश्यू सरकोमाट कैंसर था जिसकी, इसके अलावा उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और वो काफ़ी लगभग 9 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे. लेकिन एक हिंदुस्तान अखबार ने उनसे जुड़ी एक बड़ी प्यारी सी खबर है जिसमें उसमें लिखा है कि ड्राइवर के बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया. दरअसल अरुण जेटली अपने साथ काम करने जो उनके सहयोगी थे उनके बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिनमें उनके अपने खुद के बच्चे पढ़ते थे. उसमें से कुछ जिनके एक सहयोगी का एक बेटा डॉक्टर बन चुका है, एक इंजीनियर बन चुका है, जिसके भी अच्छे नंबर आते थे वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी देते थे. इसके अलावा दूसरी अगर खबरों की बात करें तो 2012 बैच के IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है. केरल के निवासी हैं कन्नन और उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरे लिए सबसे खास है और मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं. तो ये बहुत बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से. पतंजलि योगपीठ के बालकृष्ण जो है उन्हें एम्स से छुट्टी मिल गई है. वो कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती करा गया था उन्हें,
कल ही उनको दिल का दौरा कह रहे हैं पड़ा था, ऐसी खबरें थी. इसके अलावा दैनिक जागरण पर खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में कहा है, कल वो परसों यूएई में थे और फिर बहरीन पहुंचे, तो यूएई में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में निवेश करें. इसके अलावा भूमिका एक बड़ी दिलचस्प खबर भी है दैनिक जागरण पर ही जो मैं देख पा रहा हूं, उसका शीर्षक है कि 30 साल तक 3 विभागों से तनख्वाह लेता रहा इंजीनियर.
जी
एक इंजीनियर 30 साल तक
बिहार
सरकार के 2 विभागों में एक साथ 3 नौकरी कर वेतन भत्ते लेता रहा, और जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसने इस गड़बड़ी को पकड़ा. और इसके अलावा कई और खबरें हैं, जैसे राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं को कल श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया. तो
शायद मैं एक तस्वीर बस चलते चलते एक तस्वीर का जिक्र करते चलूं कि कल अरुण जेटली का जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो सोनिया गांधी भी वहां पहुंची, और जिस तरीके की वो एक तस्वीर है वो बेहद आत्मीय तस्वीर है. तो लगता है कि जब ऐसे मौके हैं तो पक्ष और विपक्ष का कोई उस समय जिक्र नहीं है, सिर्फ इंसानी तौर पर हम लोग मिल रहे हैं.
अखबारों की समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका. ये रहे दिल्ली के अखबारों की बात, अब बात करते हैं पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की. पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में इस सप्ताह अनुच्छेद 370 से जुड़ी खबरें छाई रहीं। पाकिस्तान से छपने वाली उर्दू अखबारों की समीक्षा तैयार की है बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने और इसे अपनी आवाज दी है भूमिका राय ने।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबार भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात का भी जिक्र है। अखबार जंग ने सुर्खी लगाई है, मोदी का फ्रांस में मुर्दाबाद के नारों से स्वागत। अखबार के अनुसार मोदी के पेरिस आने पर यूनेस्को हेड ऑफिस के सामने कश्मीरी युवाओं ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा एफिल टावर के पास भी कश्मीरियों ने मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखबार के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रों ने मोदी से मुलाकात में कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहिए। हालांकि मैक्रों ने जब कश्मीर और अनुच्छेद 370 के मामले में भारत का साथ जो दिया है, इस खबर को किसी भी पाकिस्तानी अखबार ने नहीं छापा है। अखबार एक्सप्रेस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान के हवाले से सुर्खी लगाई है, मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल पैदा करने वाला फैसला, मोदी के अमेरिका आने पर भरपूर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जाए, इमरान खान। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे। अखबार के अनुसार इमरान खान ने कहा है कि मोदी सरकार मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून को रौंद रही है और कश्मीरियों को अपने जुल्म का शिकार बनाने की तैयारी कर रही है। इमरान खान ने कहा कि वो भारत प्रशासित कश्मीर के लोगों की आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। अखबार दुनिया ने सुर्खी लगाई है, दो परमाणु शक्तियां आमने सामने, कुछ भी हो सकता है, भारत से बातचीत का अब कोई फायदा नहीं, इमरान खान। अखबार के अनुसार इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का बहाना ढूंढने के लिए भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर में कोई भी जाली ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु स्विट्जरलैंड में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। पांचवी वरीयता हासिल पीवी सिंधु ने कल सेमीफाइनल में चौथी वरीयता हासिल चीन की चेन युफेई को 21-7 21-14 से मात दी। आज फाइनल में सिंधु का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में थाईलैंड की रतचानो किंतानोन को 17-21 21-18 21-15 से हराया। लेकिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के पी साई प्रणीत सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। वहीं भारत ने एंटीगा में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। कल तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 185 रन बना लिए थे। स्टंप के समय कप्तान विराट कोहली 51 और अजिंक्य रहाणे 53 रन बनाकर नाबाद थे। केएल राहुल 38, मयंक अग्रवाल 16 और चेतेश्वर पुजारा 25 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 222 रनों पर सिमटी और भारत को 75 रनों की बढ़त मिली। अब भारत के पास 260 रन की बढ़त है और उसके 7 विकेट बाकी हैं। उधर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य है और कल जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब उसका स्कोर 3 विकेट खोकर 156 रन था।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार दोपहर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज रविवार दोपहर बाद दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहरीन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी बहरीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्राजील के रक्षा मंत्री का कहना है कि सशस्त्र सेना ने वर्षावन में लगी आग को काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने नई रणनीति के साथ सामरिक हथियारों को विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि नए युवा वैज्ञानिकों ने जो मिसाइलें बनाई हैं वो देश के लिए बेशकीमती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने G7 समिट में शामिल हुए नेताओं से अपील की है कि सभी को मिलकर वैश्विक व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए आगे आने की जरूरत है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।